فاما الانسان اذا ما ابتلاه، مگر انسان بھی عجیب شے ہے کہ جب آزماتا ہے اس کو ربہ، اس کا رب جب رب آزماتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ فاکرمہ ونعمہ، اس کا رب اس کو عزت دیتا ہے اور اس پر انعام دیتا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے تو کبھی عزت اور انعام کو اللہ کی آزمائش نہیں سمجھا، لیکن حقیقت کیا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، نعمت آزمائش بھی ہے تو نعمت کا چھیننا بھی آزمائش ہے. جب اللہ کسی کو آزماتا ہے تو اس کو عزت دینا شروع کرتا ہے، لوگ اس کے آگے پیچھے پھرتے ہیں، اس کی کرسی ٹھیک کرتے ہیں، اس کے جوتے اتارتے ہیں، لوگ اس کی گاڑی کے آگے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھتا ہے واہ میں تو بہت بڑا ہو گیا، مجھے تو اتنا ملا. کہا نہیں، یہ عزت و نعمہ، یہ نعمت اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. کیسے پتہ چلے گا یہ آزمائش ہے؟ رویے سے. دنیا کی دولت ملے، عزت ملے، شہرت ملے، اس کے بعد ہوتا کیا ہے، انسان کرتا کیا ہے، یہ بات خبر دیتی ہے کہ انسان اصل میں ہے کیا. جس کردار کی یہاں بات کی گئی، جب اس کو عزت ملی بھول گیا، شہرت ملی بھول گیا، فیقول ربی اکرمن، تو کہتا پھرتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی، آئی ڈیزرو اٹ، میں نے اتنا پڑھا، میں نے اتنی دولت کمائی، کام کرتے ہیں جی، محنت کرتے ہیں، عزت کیوں نہ ملتی، اللہ کی کیا بات ہے، یہ تو ہمیں ملنی تھی. سراسر مادہ پرستانہ ذہن، یعنی جب دولت ملتی ہے تو پھولنے لگتا ہے، اکڑ جاتا ہے. اگر دیکھا جائے تو انسان سے مراد اصل میں یہاں کافر انسان مراد ہے، کہ جو دل چاہتا ہے اللہ کے بارے میں خیال باندھ لیتا ہے، جیسے چاہے زوم کا شکار ہو جاتا ہے. پھر اللہ کو غصہ آتا ہے تو اللہ اس کی پکڑ کرتے ہیں، ساری دولت چلی گئی، ساری عزت شہرت چلی گئی، کل تک تخت تھا آج تختہ ہو گیا، تو پھر اس کی زبان سے کیا کلمات نکلتے ہیں؟ اذا مبتلہ فقدر علیہ رزقہ فیقول ربی احانن، اور جب اس کو یوں آزماتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دے، تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا. اللہ اکبر، میں نے کیا کیا، بس اللہ نے ذلیل کر دیا، مجھے تو اپنا کوئی گناہ سمجھ ہی نہیں آتا. آپ دیکھیے کہ بعض لوگوں کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے، رہنے کے لیے ان کے پاس شاندار قسم کے گھر ہوتے ہیں، اولاد کی کمی نہیں، معاشرے میں عزت شہرت سب کچھ ہے. اس کے برعکس بعض لوگ مفلس اور کلاش ہوتے ہیں، کئی قسم کی محرومیوں کا شکار ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا رد عمل ایک جیسا نہیں ہے. جو پہلا کردار ہے یہ مادہ پرست ہے، مٹیریلسٹک اپروچ کا ہے، نہ اس کو خوشحالی راس آتی ہے اور نہ اس کو آزمائش راس آتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں رویوں سے دکھتا ہے، خوشی آتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ اب اللہ کی تو ضرورت ہی نہیں رہی، اب جتنا خوش ہونا ہے ہو لو. ٹوٹتے ہیں قانون، ٹوٹے ہیں، نہیں مانتا کوئی کسی کی، نہ مانے میں کیوں مانوں. اور ذرا ایسے شخص کے اوپر مشکل آئے تو اتنی کفر کی اور اتنی مایوسی کی باتیں کرتا ہے، نعوذ باللہ اللہ کو بھی کہتا ہے کہ اللہ از ناٹ فیئر، اور اللہ تعالیٰ تو پتہ نہیں ایسا کیوں کر رہے ہیں. اور اس طریقے سے وہ دونوں امتحانوں میں فیل ہو جاتا ہے. دو پرچے ہیں، ایک صبر کا اور ایک شکر کا. اللہ کے نبی نے اس کے برعکس مومن کی بات کی کہ عجیب معاملہ ہے مومن کا، نعمت ملے خوش، خوشی سے شکر، شکر سے جنت، غم ملا صبر، صبر سے جنت، اور صبر کے بدلے میں وہ جنت میں پہنچ گیا. تو ہر ایک اپنے رویوں کو دیکھے. کلا بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ اس کی وجہ، کس کی وجہ؟ یہ احانن جو ہوئی، جو تم پہ اللہ نے قادر علیہ رزقہ کا معاملہ کیا، اس کی وجہ کیا کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے. نوٹ کیجئے گا کہ پیچھے کئی دفعہ یتیم کی بات ہوئی، کھلاؤ، رکھو، ان کے مال کو جمع کرو، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، سورت نساء میں خاص طور پہ بہت ساری باتیں ہوئیں، لیکن یہاں کھلانے کی نہیں بات، پلانے کی نہیں بات، یہاں تکریمون کی بات ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یتیم پر صرف خرچ کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا بھی لازم ہے. بعض دفعہ جو لوگ ہمارے ٹکڑوں پہ پل جاتے ہیں، ساری زندگی تانے کھاتے ہیں، تم ہمارے ٹکڑوں پہ پلے، تمہارا باپ نہیں تھا، ہم نے تمہیں یہ دیا، فرمایا اس سے بات نہیں بنے گی کہ کھلاتے کیا ہو، یہ دیکھو کہ کھلاتے کس سوچ کے ساتھ ہو. آپ دیکھیں کہ زہر آتا ہے نا تو پھول جاتا ہے جسم، وہاں سے زخم میں سے پس پڑتی ہے یا پانی پڑ جاتا ہے. جو برے دل کا شخص ہوتا ہے نا، وہ دولت آنے پہ پھول جاتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ میری عزت ساری میری وجہ سے ہے، اور جب ذرا اس کا کچھ جاتا ہے نا تو جیسے کسی کے جسم کا پانی خشک ہوا اور ڈی ہائیڈریٹڈ، پیلا رنگ اور بالکل نچڑا ہوا محسوس ہوتا ہے. اسی طرح سے یہاں محسوس ہوتا ہے کہ جو شخص حقیقت میں अच्छे दिनों में भी अल्लाह की तरफ ना गया, बुरे दिनों में भी ना गया, फिर उसके लिए इस दुनिया में तो कुछ है सो है, आखिरत में उसको नहीं मिलेगा। एक लंबी लिस्ट है और आप चारों चीज़ों को नोट करेंगे, चारों के पीछे माल की मोहब्बत है। यतीम की इज्जत इंसान क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उस पर माल लगेगा तो गुस्सा आता है, दिल में कंजूसी और बुखल है कि लो मैं इसको खिला रहा हूँ। दूसरा इनका जुर्म, वला तहादून अला तामिल मिस्कीन, और ना तुम तरगीब देते हो मिस्कीन को खाना खिलाने की। इनकी बस्ती में, इनके मोहल्ले में, इनके पास पड़ोस में कई लोग फाके के साथ मर रहे हों, लेकिन ये अपनी रंगरलियों में मसरूफ़ होते हैं। इन्हें कभी इन मिस्कीनों की तकलीफ़ का एहसास नहीं होता, जो ना खुद इनकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं और ना ये उन तक पहुँचते। कोई दूसरा देने लगे किसी को तो ये उसका हाथ खींच लेते हैं। हकीकत ये कि इनके दिल हमदर्दी के जज्बात से खाली होते हैं। इनकी संग दिली यही है कि ये दूसरों को देते नहीं, अपने नाम पे खूब खिलाते हैं लेकिन मिस्कीन को नहीं खिलाते। नबी सल्लम ने फरमाया कि बदतरीन वलीमा वो है कि जिसमें उमरा को बुला लिया जाए और गरीबों को छोड़ दिया जाए। और आप देखिए कि आज इस बात की ज़्यादा फिक्र है कि हमारी दावत में कोई MP आए कि नहीं, कोई MLA आए, कोई प्रेजिडेंट, कोई प्राइम मिनिस्टर साहब आए कि नहीं, और मिस्कीनों गरीबों को हो सकता है कि उस दिन पास फटकने भी ना दिया जाए कि तुम्हारा तो वो स्टेटस नहीं है कि तुम इतने बड़े होटल में आके बैठो और तुम घर बैठो। तो ये सोचने की बात है, ला तहादुन, या फिर देखिए रगबत नहीं देते, ये नहीं कहा खिलाते नहीं, बल्कि रगबत देना उससे पहले का दर्जा है। वतकुलूना तुरास अकलल लम्मा, और चट कर जाते हो मीरास का सारा ही माल, यानी जब कोई करीबी रिश्तेदार मर जाता है सारी जायदाद तुम खुद समेट के ले जाते हो, ना बीवी को उसकी देते हो, ना बच्चों को देते हो, ना बूढ़ी माँ को मिलता है, बहनों को जहेज के नाम पे तरखा देते हो, छोटे बच्चों के तुम खुद ले चलते हो और महरूम कर देते हो उनको। इमाम कुर्तुबी कहते हैं कि मुशरिकीन औरतों और बच्चों को विरसे में कुछ ना देते थे, सूरत निसा में डिटेल से हमने पढ़ा था, बल्कि उनके हिस्से को भी अपने हिस्से के साथ मिलाकर हड़प कर जाते थे। उसी का इधर तस्कर है कि ताकुलूना तुरास अकलल लम्मा, ये जो लफ्ज़ है ना लम्मा, लाम मीम मीम इसका रूट है, जम्मा के मानों में। लम्मा का मानी होता है जमा करना। कलाम अरब में लमम का मादा इसी मफहूम से, पीछे हमने पढ़ा था सूरह नजम में, इल्लल लमम, छोटा करना किसी चीज़ को। तो जब तुम किसी चीज़ को जमा कर लो और समेट लो तो कहते हैं अरब लोग, लमा तो शयुन अलम्मुहु लम्मा, यानी इसमें समेटने की बात है। आप देखिए अल्लाह ताला ने कैसी बारीक बात यहाँ खोल दी कि जो लोग दुनिया में अपने माल को पाकर भी अल्लाह का शुक्र ना करें, फिर दूसरों के मरने पे भी उनको कोई इबरत नहीं मिलती। वो उसके मरने की फ़िक्र छोड़कर ये फ़िक्र करते हैं कि अब हमने इसके मरने पे इसके रिश्तेदारों से इसके विरसे में से लेना क्या। फरिश्ते पूछ रहे होते हैं क्या लेकर आए, और दुनिया वाले पूछ रहे होते हैं क्या छोड़ कर गए। यही फ़र्क है बस हमारी सोच का और फरिश्तों की सोच का। हमें दूसरे का विरसा लेते हुए भी खुदा याद ना आए तो कब याद आएगा। कितने लोग हैं जो दूसरों का माल नाहक खा जाते हैं। माले मुफ्त दिले बेरहम की बात, विरसे में मिली हुई चीज़ तो बिल्कुल ही इंसान के लिए बेकार होती है, उसकी तो कदर ही नहीं होती, कितना खाएगा कोई। मैं सोचती जिसको एक दफ़ा ज़िंदगी में विरासत में से हिस्सा मिला किसी की, आप खुद से सवाल करें। आप सुनने वाले मुख्तलिफ स्टैंडर्ड के, मुख्तलिफ एज के लोग होंगे, आप सोचिए ज़रा कभी आपको किसी का विरसा मिला, माँ से मिला, बाप से मिला, किसी के शौहर से, बेटों से। दुनिया तजादात का मजमू है, बहुत सारे लोगों के साथ हालात होते हैं। अगर आपको मिला है बिलफर्ज, तो फिर पूछिए कि मेरा किसको मिलेगा। अगर किसी एक का विरसा ले चुके हैं और अभी तक माल की मोहब्बत नहीं गई तो फिक्र है, लम्हा फिक्र है, ये गौर की बात है। जाने वाले हमें जब दे के जाते हैं वो साथ हमारा दिल ले जाते हैं कि तुमने क्या किया। अब देखिए कि अपनी ज़िंदगी में अपनी चीज़ों को इंसान हाथ नहीं लगाने देता, कोई एक नज़र भर के देखे ज़रा कोई किसी की चीज़ को तो इतना इंसान बुरा समझता है। दुनिया में अभी मौजूद होता है लोगों के सामने और उसके हाथों से काट काट के जेवर उतारा जा रहा होता है, उसके कपड़ों को काटा जाता है, चीरा जाता है। फिक्र पड़ जाती है, बैंकों में जो अकाउंट्स होते हैं वो सीज हो जाते हैं, शौहर बीवी, बीवी में से शौहर किसी का इंतकाल होता है, सारे इंतजाम उन्होंने पहले किए होते हैं कि कोई मर गया तो ये होगा वो होगा, रिश्तेदार उनकी चीज़ों पर नज़रें लगा के बैठे होते हैं, जाने अल्लाह कहाँ जाता है। कितने सोचने की बात है। अल्लाह ताला कहते हैं वतुहिब्बुनल माला हुब्बन जम्मा, और दौलत से हद दर्जा मोहब्बत करते हो। हुब और जम दो लफ्ज कितने वजन पे पड़ते हैं। इतनी जमा का शौक है, इतनी है जमे कसीर और ज्यादा। अच्छी मिले, जायज से मिले, ना मिले, नाजायज से मिले, चोरी से मिले, रिश्वत से मिले, हमें लेनी है। दीवाना जैसे क्रेजी हो जाते हैं ना, इसी तरह जिसका दिल दुनिया में लग जाता है ना, वो माल को जमा करने के लिए इस तरह क्रेजी होता है। देखिए, मोमिन के पास दौलत होती है, लेकिन मुश्किल हालात में ज़रूरत के लिए होती है, अपनी ज़ात के साथ साथ अल्लाह की दीन की ज़रूरत के लिए होती है। आप कभी भी पैसा जमा करें तो फ़ौरन सोचें, मेरे मोटिव्स क्या हैं, मेरा गोल क्या है, मैं क्यों कर रही हूँ ये काम, ये क्यों दौलत मेरे पास है। इसलिए कि जहाँ ज़रूरत पड़ी मेरे किसी रिश्तेदार को, बिस्मिल्लाह ले लीजिए, जहाँ अल्लाह के रास्ते में ज़रूरत पड़ी आप ले लीजिए, ये है दौलत का बेहतरीन मसरफ। इससे तो आप अजर कमाएंगे इंशाल्लाह। जमा करना कोई बुरी बात नहीं है दौलत, लेकिन मुश्किल वक्त में उसको इस्तेमाल ना करना ये बुखल है, ये कंजूसी है। इसके अलावा अगर इंसान माल से इतनी मोहब्बत करता रहे कि जान जाती जाए माल ना जाए, कहते चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए, ये फिर दिल के रोगी की बात है। ऐसा शख्स जो है वो अपने दिल का इलाज करवाए। किस तरीके से ये लोग मौजूद हैं, अब देखिए कि आजकल फौजिया बाजी की तबीयत ख़राब है, अल्लाह ताला उनको सेहत आफियत दे, तंदरुस्ती दे। तो मुझे किसी ने कल उनकी रिलेटिव्स में से बताया कि मुझे एक बाजी की बात याद आती है और मैं अब अपने ऊपर उसको एक अमानत समझती हूँ, क्योंकि इस वक्त वो बात नहीं कर पा रही हमसे, आप सबको ही पता है बेहोशी में। तो वो कहने लगी कि कुछ दिन गुजरे जब ये हमारा लिगत का प्रोजेक्ट चल रहा था, तो बाजी ने मुझे कहा उनका नाम लेके कि मेरा दिल चाहता है कि हमारे ख़ानदान का हर घर 5-5 हज़ार करोन जमा करे और हमारी इस बिल्डिंग के लिगत प्रोजेक्ट में डाले। तो मेरा बड़ा ही तड़पता है दिल के मेरा ख़ानदान भी इसमें शामिल हो। तो मुझे बताने लगी कि अब ये इस वक्त बात सिर्फ मुझे पता है या बाजी को पता है, और बाजी बोल नहीं पा रही, लेकिन मैं अपने दिल पर इसको इतना बोझ महसूस कर रही हूँ, मुझे बताएं मैं कहाँ वो पैसे दूँ कि मैंने बाजी की ये ख्वाहिश पूरी करनी है। मैंने कहा बिस्मिल्लाह करें, आप अपनी नहीं बाकियों को भी ये बाजी की ख्वाहिश बताएं, क्या पता ये उनके बोला हुआ एक जुमला जो उन्होंने अपनी सेहत के दिनों में बोला उनकी इस बीमारी को दूर करा दे। मैंने कहा आप ज़रूर अपने ख़ानदान से बात करें, मैं नहीं कह रही, ये बाजी जिनके लिए आप आके घंटों बैठे रहते हैं, आप कहाँ कहाँ से आते हैं, सारा सारा दिन गुजारते हैं, रोते हैं, क्या करते हैं, उनको ये सदका जारिया दे, उनका एक बोला हुआ लफ्ज़ हो सकता है हमारे लिए आए। उनका ये जुमला सुनने के बाद मैंने जब उनको बाद में अंदर देखा तो यकीन करें कि वो बिल्कुल होंठ भी खुले हुए हैं, कमज़ोरी की वजह से थोड़ा सा जैसे मुंह खुल जाता है। मैं इस जुमले की आड़ में उनको देखती रही कितनी देर। मैंने कहा बाजी आज आप कोई नहीं बोल सक रहे अभी जुमला, जो बोलना था अभी तक बोल दिया, इंशाल्लाह आप होश में आएंगी फिर बोलेंगी। हमें से किसी को नहीं पता कि हमारी ज़ुबान से क्या इस वक्त निकल सकता है और हम नहीं निकालते, लेकिन आप देखिए कि हम सूखी मोहब्बतों के दावे बड़े करते हैं, हमें फ़लां से बड़ा प्यार, हमें फ़लां बड़ा, लेकिन हमें उनके मिशन से प्यार नहीं होता। यही हाल हमारा अल्लाह के नबी के साथ है, यही हमारा आज दीन के साथ है। हम सूखा प्यार करते हैं दीन से, दूर से चिमटाते हैं इस दीन को, प्यार किया और छोड़ दिया, अपना बच्चा नहीं समझते दीन को, ये लावारिस बच्चों की तरह ये दीन फिरे तो दूर से हम कहते हैं बड़ा अच्छी बात है, बहुत हम अच्छा काम कर रहे हैं, ये है वो है, लेकिन ज़रा कहा जाए कि आप भी बिस्मिल्लाह करें, आप भी अपना हिस्सा इसमें डाल लें, तो कई मजबूरियों के दरवाज़े खुल जाते हैं। और मैं हैरान होती हूँ कि बाज़ दफ़ा हम अपनी ज़िंदगी का इतना गलत यूज़ करते हैं, हमें कतन कोई ख्वाहिश नहीं होती कि आप आइए, आप बैठिए, आप सुनिए, आखिरी सूरते हैं, लोग सुनते हैं मुरव्वत के मारे सिर्फ ये बात, नानी कभी भी कोई कहता, लेकिन साफ आंखों से पता चल रहा होता है कि कोई गौर से सुना नहीं, कोई एक क्रॉस क्वेश्चन नहीं होता उसके बाद, कहाँ कब कितने बजे आएँ किधर आएँ। लेकिन जो ही आप बात करें, कल यही बात करते हुए एक बीच में छोटी सी और काफ़ी दिन से ही इनका प्रोजेक्ट था तो उस पर बात हुई, वहीं हम हॉस्पिटल में ही थे, तो बात हुई कि एक एक जाय नमाज की जगह अगर लेगत प्रोजेक्ट में हम 5,000 की करके तो इसको दूसरों तक शेयर करें कि आप लें, तो बैठे बातें कर रहे थे हम कहीं और भी, तो उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया किसी को कि आप अपने फौजशुदा जो आपके बुज़ुर्ग हैं बड़े, तो आप उनके लिए जगह लें इधर, आप अपने एक मसल्ला रखें। कई लोग तैयार हो जाते हैं इस बात पर, कोई कह रहा है मैं अपनी माँ का ले रही हूँ, कोई कहता है बाप का ले रहा हूँ, कोई क्यों। मैंने फ़ौरन सोचा कि जो बंदा दुनिया से चला गया तो उसके लिए हम बहुत कुछ करते हैं, ये कौमों की भी हालत थी, ज़िंदगी में नबियों को माना नहीं और जब वो दुनिया से चले जाते हैं आप उनको बुज़ुर्ग बना के उनकी कब्रों पे बैठ जाते हैं। हम मरने का इंतज़ार करते हैं, कोई मरे तो उसके लिए कुछ करेंगे, यकीन करें। कल मैंने बड़ी शिद्दत से ये नोट किया, हमारे यहाँ मरहूमीन का लफ्ज़ लेके इसाले सवाब के कई तौर तरीके हैं, लेकिन ज़िंदा लोगों के सदका जारिया के लिए हम नहीं बोलते, बहुत कम है। कोई अल्लाह ही हमारे ऊपर चट्टी डाल दे तो हम कर चुके। जब भी पति को देख के आती हूँ तो मैं सोचती हूँ, बल्कि जो मैंने सोचा कल मैंने वहीं किसी से शेयर किया तो कहने लगी बिल्कुल यही बात आज सुबह उनके मियाँ भी मुझसे कर रहे थे। मैंने कहा मैं बाजी के बारे में सोचती हूँ कि ये पिछला 1.5 साल पाकिस्तान जाने से पहले तक उनकी कोई छुट्टी नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको पता है वो बर्फ़ में भी आई, -20s में भी आई, वो हम सबसे ज़्यादा दूर से आती थी और 80% वो हम सबसे पहले आई होती थी। कई दफ़ा तो उनको आध घंटा घंटा वेट करना पड़ता था सुबह मियाँ के साथ आने की वजह से। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं बाजी के बारे में ये सोचती हूँ कि ये पिछला 1.5 साल अगर इनकी ज़िंदगी का ना होता और ये जिस कैफियत में आज हैं, तो आप सोचें कि इनकी वो कैफियत आज है। मुझे तो लगता है वो अमीर है इस वक्त। वो बहुत, उनकी सास कल कह रही थी कि मुझे ये यकीन है कि अल्लाह उसे खुश बड़ा है और वो हम में से सबसे अच्छी है और इस दरस में तो उसकी जान है। दरस कहती होती थी ना क्लास को, कहेंगी इंशाल्लाह, कहती होती इसलिए बोल रही हूँ कि आजकल नहीं बात कर पा रही ना, करेंगी इंशाल्लाह फिर बात। तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे ऐसे लगता है बाजी ने पिछले 1.5 साल में अपने लिए बहुत ज़खीरा जमा किया है। कह रही आज सुबह उनके मियाँ मुझे यही कह रहे थे और सुना रहे थे कि मैंने अखीर हार मान ली थी कि इसको दर से रोको। खुद बता रही थी उनके एक रिश्तेदार कि बाजी मुझे आके कहती थी कि आपको पता है कि मैं घर से बीमार भी होती हूँ, मुझे तकलीफ़ होती है, मैं जो ही दरस में पहुँच जाती हूँ मैं ठीक हो जाती हूँ, मुझे वहाँ जाके ना बीमारी याद रहती है ना भूख। मुझे बता रही, कह रही मैं सच्ची बताऊँ मैं बाजी की ये बात सुन के गुस्सा करती थी। मैं कहती थी ये तो झूठ है, ये कैसे हो सकता है बंदा इतना थका हो इतनी दूर से जाए तो वहाँ जाके आप ठीक हो जाए। तो कहती लेकिन अब मैं रोती हूँ। और वो अब इस बीमारी में कह रही हैं कि मैं अब नियत करती हूँ कि मैंने रेगुलर हो जाना इन क्लासेस में, अल्लाह बाजी को सेहत दे। तड़पने वाली बात है ना, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, हम सब जा रहे हैं खाली हाथ है, हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा जब हम जाएंगे, हमारे पास सिर्फ चंद नेकियां होंगी जो हमने की होंगी, हमने कुछ कोशिश की होगी, हम कुछ करना चाहते थे हमने किया, हम करना चाहते थे हम नहीं कर सके वो भी जाएगा हमारे साथ इंशाल्लाह। लेकिन वताकुलो न तुरा सकलम्मा, अपने आप को डेथ बेड पे लिटा कर इंसान सोचे कि मेरे इर्द गिर्द लोग क्या बातें कर रहे होंगे, उस वक्त मेरी क्या पेशरफ थी, मेरी ज़िंदगी कहाँ गुजर रही थी, मैं क्या करती थी और कितना तड़पती थी बाजी आप सबकी क्लास के लिए। बाजी के दिल में कितनी तड़प थी, वो जूते रखने से लेके आपके चलने फिरने बोलने बाद, जब मैं और वो बैठते थे हम हमेशा मैनेजमेंट की यही बातें करते थे। कहती मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूँ, मैं अब इनको एक एक को पकड़ पकड़ के बताऊँ कैसे चलना है, ऐसे हंसना है, ऐसे बोलना है, ये मेरे से कुछ नहीं सीखते, मैंने कभी इस तरह बातें की हैं जिस तरह ये करते हैं। हम यकीन करें यही बातें करते थे, चाहे आपकी बुराइयाँ हो या किसी की हो, यानी हम इसलाह की कोशिशों में हर वक्त इन कोशिशों में होते थे। मैं कहती हूँ अल्लाह उनको मौका दे वो फिर आए, फिर वापस आके अपनी जगह को देखें संभालें कि अल्लाह ताला कितना यकीन करता है। और उनके मियाँ ने कहा ये जब से नॉर्वे में आई थी इनकी ये ख्वाहिश थी, ये जो अल्लाह ने इस क्लासेस के ज़रिए से इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से इनकी पूरी की है पिछले 1.5 साल में, कि अल्लाह ने एक बहाना बना के हमें क्लासेस के लिए यहाँ प्लेटफॉर्म बनवा दिया नूरुल कुरान का, और वो कुरान के नूर को फैलाने के लिए लगी थी ना, वो तो जानती भी नहीं थी हमें। मैं तो जब यहाँ आई थी उससे बाद मैंने उनको जाना, कई साथी पहले से जानने वाले थे वो तो बाद में मिली, लेकिन मकसद था ना एक, तड़प एक थी ना, कर गई अपने लिए, अल्लाह मौके दे उनको, और अभी तक तो कर चुकी है ना अपनी कोशिशें। हम में से किसको पता है कि हमने इस तकमील तक भी जिंदा रहना है, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। अपने बारे में वो बात क्यों समझ नहीं आती जो दूसरे के बारे में यकीन की होती है। अल्लाह तआला कहते हैं कल्ला इज़ा दुक्कत अल-अर्ध दक्कन दक्का, हरगिज़ नहीं या यकीनन, दोनों ही बातें हैं। याद करो वो वक्त जब ज़मीन कूट कूट कर रेजा रेजा कर दी जाएगी, लफ्ज़ दक्कन दक्का अपनी साउंड के साथ मानी दे रहा है, कूट कूट के किसी चीज़ को हमवार कर देना। कभी आपने सड़क बनती देखी होगी, पत्थर डालते हैं लोग, फिर उसके बाद एक लंबा सा डंडा होता है जिसके नीचे लोहे का चपटा सा कोई मोटा सा एक बोझ पड़ा होता है, फिर वो उससे कूटते हैं। आज के दौर में तो बिल्डोज़र चलाते हैं। दक्कन दक्का, हिल हिल के चीज़ ऐसे सीधी होगी कि लोगों को समझ आ जाएगी। आज जिनकी आंखें बंद हैं कल खुलेंगी, जब वजा रब कवल मलक सफन सफा, और जब आपका रब जलवाए फरमा होगा और फरिश्ते कितार दर कितार हाजिर होंगे, फरिश्ते भी सफ़ों में आएंगे, उनकी भी कितारें बनी होंगी, आपका रब भी आएगा। अल्लाह की शान कैसे आएगा हमें नहीं पता, मुतशाबे हाथ में से आए, فرشتوں کا آنا صفوں میں، کئی جگہ اس کا تذکرہ قرآن میں آ گیا، وَجِيَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ، اور سامنے لائی جائے گی اس دن جہنم، پھر دیکھیں آئے گی نہیں بلکہ لائی جائے گی۔ روایات میں آتا ہے کہ جہنم کو 70,000 لگامیں ڈال کر کھینچ کر میدان محشر میں لایا جائے گا۔ کیسے لایا جائے گا اللہ کو پتہ، ہم کچھ نہیں کہتے۔ جہنم آج ساتویں تہہ کے اندر ہے، بھڑکی ہوئی ہے، سمندروں کو اس دن آگ لگ جائے گی۔ اللہ کیسے اس کو ہانک کے لے آئے گا ہمیں نہیں پتہ، نہ ہمیں اس سے کچھ زیادہ فائدہ ہوگا، لیکن ہمیں اس بات کی بہرحال فکر ہے کہ یومئذین یتذکر الانسان، اور اس روز انسان کو سمجھ آئے گی کیا کہ میں نے کیا کیا۔ لیکن وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، لیکن آج اس سمجھنے کا کیا فائدہ۔ جب قیامت برپا ہو جائے گی، جب سارا نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا، اس وقت ان غافل انسانوں کی آنکھ کھلے گی، اس وقت ان کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسولوں نے جو بتایا تھا وہ حق تھا، قرآن نے جو دعوت دی تھی اس میں دونوں جہان کی عزت چھپی ہوئی تھی۔ لیکن آج کیا فائدہ، ہمارے ہاں کہتے ہیں نا، اب پچھتائے کیا ہوت، جب چڑیاں چگ گئی کھیت، یہ ہے وانا لہو ذکرہ، اب کیا فائدہ، بڑی دیر کی مہربان آتے آتے۔ اتنا مصروف تھا تو، اتنا غافل تھا، اتنی دنیا کی محبت، اتنی تیری پرائیورٹیز دنیا کے لیے تھی، اب کیا کہتے ہو، کھڑکی بند ہو گئی، کلوز، دفتر اٹھا لیا، بند کر دیا سب کچھ، اب آئے ہو، اب تمہیں خیال آئے، اور حسرت ہے کہ بندے کی ختم ہی نہیں ہو رہی۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس دن کہے گا کہ کاش میں نے کچھ آگے بھیجا ہوتا اپنی اس زندگی کے لیے، میں نے تو سب کچھ پچھلی زندگی میں رکھا، آج کفے افسوس ملے گا انسان، کاش آج کے دن کے لیے، اس نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے کچھ توشہ فراہم کیا ہوتا، کاش آج میں خالی ہاتھ نہ ہوتا۔ اس دن انسان کو نصیحت ملے گی، اس دن سوچے گا انسان کہ میں نے آج کیا کیا۔ لفظ تذکر کو دیکھ لے، ذکرہ، ذکر سے کیسے اس دن سمجھ آئے گی، نصیحت اس دن آئے گی، کاش میں اس دن کچھ کرتا، کوئی غلط کام چھوڑے ہوتے تو مجھے فائدہ ہو جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دن کا پچھتانا کچھ فائدہ نہ دے گا۔ فَيَوْمَئِذِ اللَّهُ يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، پس اس دن اللہ کے عذاب کی طرح کوئی عذاب نہ دے سکے گا، یعنی جیسا عذاب اللہ دے سکتا ہے وہ تو کوئی دے ہی نہیں سکتا، اور جیسا عذاب اس دن اللہ دے گا، اس دن یا اس جیسا عذاب تو کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ اس کے باندھنے کی طرح کوئی باندھ سکے گا، رسیوں میں، ڈنڈوں میں، زنجیروں میں جو باندھے گا رب اس دن، اس کی گرفت بڑی سخت ہے، اس لیے کہ اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، آج نہیں بنتے نا اللہ کے حکم کے آگے، اللہ کی بات سے نہیں بنتے نا، تم یہ سوچتے ہو نا جو کر رہا ہوں موج مستی، مجھ سے کس نے پوچھنا ہے، کوئی ہو جو ذرا آ کے میرے سامنے بات تو کرے، کوئی پر تو مارے، کہا کل اس کے کارندے جب جہنم کی زنجیروں میں تم کو باندھیں گے نا، تو پھر لگ بتا جائے گا تم کو کہ باندھنا کیا ہوتا ہے۔ کیا یہ آیتیں قرآن کا حصہ ہے؟ کیا رب کا کلام ہے؟ کیا بغیر ایک لفظ کہے بھی اس کی بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر بھی لوگ جہنم کا انکار کرتے ہیں، پھر بھی لوگ کہتے ہیں نہیں یہ ایک پیروڈی ہے، یہ خیال ہے، نہیں یہ ایسا ہے، یہ سوچ کا فرق ہے، یعنی لوگ سوچتے ہیں یہ ایک فیلنگس کا نام ہے جہنم، حالانکہ یہ ایک ریئلٹی کا نام ہے۔ جیسے اس وقت آپ اس کلاس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، اس کی چار دیواریں، ایک چھت ہے، ایک فرش ہے، اس طرح قیامت اور جہنم اور جنت یہ لٹرلی کچھ چیزیں ہیں، یہ تھاٹس نہیں ہیں، یہ سوچ نہیں ہے، یہ حقیقت میں انسان کے سامنے ہے۔ خود اپنا نام لکھیے اس جگہ، یومئذین یتذکر الانسان، انسان کے نیچے اپنا اپنا نام لکھیں، خود کو خود مخاطب کریں کہ اس دن مجھے سمجھ آئے گی، اس دن پتہ چلے گا کچھ بھی نہیں ہے میرے ہاتھ میں۔ بعض لوگ آخری لمحے تک زندگی کے، ان کو نہیں پتہ ہمارا یہ آخری لمحہ ہے، مال کی کوششوں میں ہوتے ہیں، بھاؤ تاؤ کر رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ حلال نہیں تو حرام مل رہا ہے، اگلے ہی لمحے موت آتی ہے، پتہ چل دے نا ان کو کہ میری موت میں اتنے دن رہ گئے۔ میں نے کل بہت سوچا، میں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے پتہ چل دے نا میں نے ابھی کتنا جینا ہے، میرے پاس کتنے دن ہیں، تو پتہ نہیں میرے لیے کتنا بڑا اللہ کا انعام ہوگا، اللہ نے چھپا کے رکھا تاکہ ہر لمحے کو موت کا لمحہ سمجھو۔ یہی تو اصل میں امتحان ہے، मत सोचो कि अभी जवान हूँ, और अभी तो जवानी भी पूरी नहीं आई। मौत के लिए ना जवानी की ज़रूरत है ना बुढ़ापे की। यहाँ तो ये भी नहीं पता कि बच्चे ने एक सांस लेना भी है कि नहीं लेना। कितनी कोशिशें हैं, आप ज़रा सोचे तो सही। हम इस वक्त जायज़ नाजायज़ हलाल हराम की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ कोशिशों की बात करते हैं। और मैं अपनी कोशिश देखूं, माल कितना चाहिए होता है हमें, कितनी उसके लिए कशिश, कितनी कोशिश। जिस चीज़ में कशिश होती है ना उसमें कोशिश भी है। दिन नहीं तो रात, रात नहीं तो दिन। ज़रूरियात हम बढ़ाते जाते हैं, बाज़ दफ़ा फ़राइज़ ज़िम्मेदारियाँ निभाने के बाद सिर्फ एक्स्ट्रा माल चाहिए होता है, जिसके लिए बच्चे रुलाए जाते हैं, जिसके लिए शौहरों को परेशान किया जाता है। इतनी तड़प तो हमें नेकियों की भी नहीं है जितनी हमें माल की तड़प है, जो सिर्फ़ इस दुनिया के काम में आएगा। और जिस चीज़ की तड़प हमें आखरत के लिए, उसके लिए हम कितने अपने आप को मुतमईन रखते हैं। आप देखिए कि ये सोच कोई जवान होने पे नहीं आती कि माल जमा करना है। आपका बच्चा जो प्राइमरी में जा रहा है ना, वो भी असल में माल जमा करने की पहली कोशिश है। आपके बच्चे की छुट्टियाँ हों, आपके सारे प्रोग्राम बने। बच्चा स्कूल में जा रहा है, आपको दावत में जाना है, वीकेंड और वीकडेज़ का फ़र्क किस चीज़ की दलील है? आपने रियलाइज़ किया कि ये बच्चा जो आज गया है ABCDA 1 2 3 पढ़ने, ये कल का मेरा कोई करोड़पति बच्चा बनेगा, मैं इसको छुट्टी नहीं करा सकती, इसके स्कूल डेज में मैं कहीं जा नहीं सकती। कल मुझे बड़ी हैरत हुई, मुझे किसी का भी नाम मुझे याद है वैसे, लेकिन मुझे लेने की ज़रूरत नहीं, किसी ने कहा कि मैं इस थर्सडे को फेरिए पर जा रही हूँ। मुझे मैसेज जो भी इनका मिला, तो वो टेस्ट देना चाहती हैं, पहले दे दें कि बाद में। यकीन करें, मैं कल सारा दिन इस जुमले की तड़प महसूस करती रही हूँ, दिल दुख के साथ। मेरा जैसे वो ब्लेंडर में आप मैंगो को डाल के ब्लेंड करें ना, तो मेरा दिल ब्लेंड हुआ सिर्फ इस सवाल के पूछने वाले के पूछने पे कि मैं जुमेरात को फेरिए पे जा रही हूँ। होगी मजबूरी, वल्ला ही मैं किसी का कोई मजाक नहीं कर रही, ना मैं किसी से नाराज़ हूँ, ना गुस्से पे हूँ। मैं तो फिक्र में लग गई कि वजह क्या हुई। ये दिन छुट्टियों के दिन है, ये घूमने फिरने के दिन है, ये खाने पीने के दिन है, ये तो तज़क्कुर के दिन है। क्यों? बच्चों को हो सकता है मौका मिल गया होगा, मियाँ की को मजबूरी होगी। इसका मतलब कि हमने पिछले 1.5 साल में 2 साल में 1 साल में हमने घर वालों को ये यकीन इतना भी ना दिलाया कि जितना प्राइमरी स्कूल के बच्चे की छुट्टियों में और एक हमारी छुट्टियों में फ़र्क है। बच्चों की छुट्टियाँ तो हमारी भी हो गई ख़त्म, वीकेंड आ गया तो नमाज से फारिग है। हर एक सोचे माँ कद्दमत या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती। इस जुमले को 10 दफ़ा अपने जुमलों में लिखें, एक पेज पूरा खाली छोड़ दे नोट्स में, और आपने बाद में इस एक जुमले को शऊर के साथ, तर्जमे के साथ 10 दफ़ा अपने नोट्स में लिखना है। जब तक ये नोट्स आपके साथ रहेंगे, इंशाल्लाह आपके लिए एक तस्कीर होगी कि या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती। मैं सोचती हूँ जिनको आज इन चंद दिनों में अगर यहाँ आना मुश्किल है, वो कहाँ आएंगे कहीं। मजबूरियों वालों की बात नहीं है, बात चॉइस वालों की है, बात थोड़ी सी मुश्किल सहने की है, बात सिर्फ थोड़ी सी सेटिंग करने की है। बात तो सिर्फ इतनी है कि जॉब हो या पढ़ना हो, दोनों का फ़र्क कितना है। जो इन छुट्टियों में यहाँ आके नहीं पढ़ सकेंगे, सुन नहीं सकेंगे, मुझे कोई उम्मीद नहीं है उनसे और अपने आप से कि कल हम एक दूसरे को फ़ायदा दे सकेंगे। अल्लाह कहते हैं वहाँ बांधूंगा, ये किताब बंदे को यहाँ बांधती है। ला यूसिकु वसाक हुआ है, जो आज कुरान की रस्सियों में नहीं बंधा, जो आज इताअत की रस्सियों में नहीं बंधा, जिसने अपने नफ्स को नहीं बांध लिया खुद ही, कल कहाँ बंधेगा। फिर अल्लाह ना करे कि फिर अल्लाह को इसको बांधना पड़े। हर एक अपने दिल के अंदर इस दर्द को महसूस करे। मैं अपने आप को सुनाती हूँ, मैं अपने आप को कहती हूँ कि अगर मेरे अंदर कमिटमेंट नहीं है, मेरे अंदर मुश्किल नहीं। अब देखिए कि आजमाइशें कितनी आती हैं, किस किस्म के दिन है। आज सुबह मुझे फ़ोन आया पाकिस्तान से, उसे पर्सनल बात नहीं बताती अपनी कोई, लेकिन मैं सिर्फ ये बताती हूँ कि कैसे अल्लाह का दीन हमें बांधता है। यानी कुछ ऐसा एक मामला इवेंट है कि मेरी फैमिली से इतना प्रेशर है कि मैं उनके पास अभी आऊँ, तो मैं फ़ोन ही नहीं करती उनको। आज उनका आखिर खुद फ़ोन आया कि क्या हुआ, फ़ोन भी नहीं करती। उनको भी पता है मैं नहीं आऊँगी, मुझे नहीं आना, मेरी ये किताब है, मेरी ये प्रायोरिटी है। मैंने कहा जिस दिन ये मामला पूरा होगा उस दिन बात करूँगी, आज बात नहीं हो सकती। मैं क्यों अपने आप को मुश्किल में डालूँ? आप महीना पहले तैयारियाँ करें, 10 दिन पहले करें, 2 दिन करें, आपकी मर्ज़ी है। जिसको जो काम करना है उसकी फ़िक्र होती है हमारा तो आजकल जहन इस चीज़ से हट के इधर से उधर जाने को दिल ही नहीं करता, सोच भी भटक जाती है। आप रात एक शादी खा के आते हैं, अगले दिन आपका दिल ही नहीं क्लास में लगता। क्या लिया आपने उस शादी से? आप 2 बजे तक वहाँ क़यामन व क़ऊदन वाला जुनूब हिम की कैफियत में बैठे खड़े खाने का इंतज़ार करते रहे। क्या दिया उन्होंने आपको? बातें देंगे आपको, कोई खुश नहीं होगा। अगले दिन सो सो के आधी क्लास छोड़ के घर आए, क्या किया? हम कहते हैं हम बीमार हैं। क्यों बीमार हैं? क्या प्रेशर है हम पे? हमारी नींदें क्यों नहीं पूरी होती? सारी ज़िंदगी का जिहाद है, याद रखिए। ये एक कोर्स नहीं ख़त्म हो रहा, ये कोर्स शुरू हो रहा है। ये कुछ सीखने की तैयारी का कोर्स था, ये अपनी ज़िंदगी को कारामत बनाने का दिन था। या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती की कैफियत से निकलने का कोर्स था। असल कोर्स मेरा और आपका भी इसके बाद शुरू होगा, जो इंशाल्लाह हमारी मौत तक रहेगा, आखिरी दम तक ये रहेगा। मुझे तो बाजी का वो संडे को आना नहीं भूलता, आप सब गवाह हैं इस बात के। किस तरीके से वो संडे को आई हैं? एक आंख पे पट्टी बंधी हुई थी इसलिए ग्लासेस लगाए हुए थे उन्होंने। दूसरे सोच रहे होंगे बड़ी मॉडर्न खातून है, लेकिन मजबूरी थी कि मेरी पट्टी कोई ना देखे। अल्लाह सबको महफूज रखे। आप बताएं हमारी आंख पे पट्टी बंधी है, हम किसी महफिल में जा सकते हैं? इतने बड़े होटल में, इतने लोग, इतनी अच्छी दावत में, हाथ में इधर बैंडेज बंधा हुआ है, हॉस्पिटल का नाम नंबर। वो उस वक्त उनको असूलन हॉस्पिटल में होना चाहिए, वो उस चीज़ की दलील है। क्या शौक लेके आए? और आपको याद है उनकी बातें जो उस वक्त वो ब्रेक ख़त्म हुई है तो वो कर रही थी, कितनी तड़प थी, पूरा ज़ोर लगा के वो बोल रही थी कि आप कितने खुशकिस्मत हैं, आप ये कर लें, आप वो कर लें, और प्यारे बच्चों, कितना प्यार उनके दिल में, कितनी अल्लाह की मोहब्बत। कौन बांधेगा इससे ज़्यादा इंसान को? इंसान का नफ्स बांधता है, कोई मजबूर कर सकता? कोई एप्लीकेशन दे के छुट्टी कर ले ना दे, किसी को कोई रोक सकता? जाइए शौक से जाइए, शो आप होते हैं नहीं होते आपकी मर्ज़ी, ये बंदा ख़ुद को मानता है। अल्लाह कहते हैं जो बंदा सारी ज़िंदगी इस जिहाद में जाता है फिर मैं उसकी ना कदरी नहीं करता। ये बंदा अब अपना नहीं रहा, ये मेरा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह दुनिया में गवाहियाँ देता है कि ये बंदा ज़िंदगी में भी मेरा था। इसकी सोच, इसका दिल, इसकी दिमाग, इसका खाना, इसका पीना सोना, ये सब मेरा था। फरिश्तों इसको मत कहो कुछ, ये मेरा बंदा है। हम सिर्फ 24 घंटे अपने सोचें, तफक्कुरात सोचें, गम खुशियाँ क्या है? अगर ये असल गम नहीं लगा ना इस कोर्स के बाद कि या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, भाई मैंने क्या किया, मैंने कुछ भेजा ही नहीं आगे के लिए। अगर ये सोच पैदा हो गई है ना, तो फिर इसका एक लामहाला नतीजा है, अंदर का इत्मीनान, खुशी।